Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Hari Om. Sahanavavatu sahanau bhunaktu sahaviryam karavavahai tejasvinavadhitamastu maam vidvisavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Dhyaye nityam mahesham rajat girinibham charu chandra vatansam ratna kalpo jalangam parasamrigavara veti hastam prasannam padmasinam samantat stutam amaragadir vyagrakrityam vasanam visvadyam visvabandhyam nikhilabhayaharam panchavatram trinetram narayanam padmabhavam vasishtam shaktim chatat putra parasarancha vyasam sukam gaudapadam mahantam govinda yogindra matasya sishyam shri shankaracharya matasya padma Padancha hastamalakancha shishyam tantotakam vartikakaramanyan asmat gurum santatamanatosmi visuddha jnana dehaya trivedi divya chakshuse shreyah prapti nimittaya namaha somardha dharine. Om Shanti Shanti Shanti. 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें. पहले पंक्ति हम बोलेंगे, उसके बाद आप लोग बोलना. शिवाय नमः. ओम शिवाय नमः. ओम शिवाय नमः. ओम नमः शिवाय. शिवाय नमः. ओम शिवाय नमः. ओम शिवाय नमः. ओम नमः शिवाय. शिवाय नमः. ओम शिवाय नमः. ओम शिवाय नमः. ओम नमः शिवाय. शिवाय नमः. ओम शिवाय नमः. ओम शिवाय नमः. ओम नमः शिवाय. हराय नमः. ओम हराय नमः. ओम हराय नमः. ओम नमो हराय. हराय नमः. ओम हराय नमः. ओम नमो हराय. हराय नमः. ओम हराय नमः. ओम हराय नमः. ओम नमो हराय. हराय नमः. ओम हराय नमः. ओम हराय नमः. ओम नमो हराय. भवाय नमः. ओम भवाय नमः. ओम भवाय नमः. ओम नमो भवाय.
बाबाय बाबाय नमः ओ बाबाय नमः ओम नमो बाबाय बाबाय नमः ओम बाबाय नमः ओम बाबाय नमः ओम नमो बाबाय बाबाय नमः ओम बाबाय नमः ओम नमो बाबाय मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम नमो मृडाय मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम नमो मृडाय मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम नमो मृडाय मृडाय नमः ओम मृडाय नमः ओम नमो शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय भज मन शिव शिव निरन्तरम् जप मन शिव शिव निरन्तरम् भज मन शिव शिव निरन्तरम् जप मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन शिव शिव निरन्तरम् स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन शिव शिव निरन्तरम् स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव ओम ओम ओम
प्रेमपुरी आश्रम आयोजित सायंकालिक विशेष प्रवचन की इस श्रृंखला आज जून 16 तारीख 2012 आज से लेकर लगातार ये 28 तारीख तक शिवानंद लहरी के विषय में आधार पर ये प्रवचन ये श्रृंखला चलेगी। जैसे कि आप लोगों ने पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा, प्रवचन का विषय होगा आदि गुरु भगवान शंकराचार्य विरचित शिवानंद लहरी के आधार पर प्रवचन करेंगे। भारतीय दर्शन शास्त्र में, भारतीय आध्यात्मिक क्षेत्र में आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारतीय आध्यात्मिक जगत के मुमुक्षुओं, श्रद्धालु, भक्त, जिज्ञासु हम सब उनके ऋणी हैं। भारत भूमि उन महापुरुषों का बहुत ऋणी रहा और आगे भी रहेगा। शंकराचार्य जी ने हमारी वैदिक सनातन के उत्थान के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके कृतियों को, उनके सिद्धांतों को, उनके भाष्य ग्रंथों को श्रद्धापूर्वक पठन पाठन अध्ययन और श्रवण निरंतर हमसे होता रहे, यही भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी के प्रति हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि है। इसके बढ़कर और कोई श्रद्धा व्यक्त करने का माध्यम नहीं है। विशेष करके हम सन्यासी समाज तो उनके बहुत ऋणी हैं। वास्तव में शंकराचार्य जी कौन थे? सामान्य चिंतन करने वालों के लिए वह एक बहुत बड़े दार्शनिक हो सकते हैं, लेकिन हम उनको केवल दार्शनिक के रूप में नहीं देखते। दार्शनिक तो बहुत हुए हैं, इस पृथ्वी में बहुत दार्शनिक हुए हैं, बहुतों का नाम है। पूर्वीय दार्शनिक, पश्चिमी दार्शनिक, अरस्तु, कांट इत्यादि भी दार्शनिक ही कहते हैं उन लोगों को भी। लेकिन उनको कभी भी आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्मरण नहीं करते, और उनके अनुयायी भले उनको गुरु के रूप में स्मरण करें लेकिन अवतार के रूप में तो स्मरण करते ही नहीं। लेकिन हमारी संस्कृति सभ्यता रही है कि हम उन महान दार्शनिकों को, उन चिंतकों को साक्षात परमात्मा के अवतार के रूप में ही स्मरण करते हैं। साधारण मनुष्य अप्रतीत प्रतिभा के धनी होने मात्र से हम उनको स्मरण नहीं करते। हमने तो शंकराचार्य को माना है शंकरम शंकराचार्य। साक्षात भगवान शिव ही शंकराचार्य के रूप में अवतरित हुए हैं, यह हमारी मान्यता है। केशवम वादरायणम, साक्षात भगवान विष्णु ही वादरायण के रूप में अवतरित हुए हैं। ये दोनों का अवतार मानो ऐसा अवतार हुआ है कि दोनों ने सलाह करके, दोनों ने विचार विमर्श करके अवतार लिया, ऐसा लगता है। सूत्र भाष्य कृतो वंदे, क्योंकि भगवान विष्णु ने वादरायण के रूप में अवतार लेकर सूत्रों की, ब्रह्म सूत्रों की रचना की, तो भगवान शिव ने शंकराचार्य जी के रूप में अवतार लेकर उन सूत्रों की व्याख्या की है, भाष्य लिखा है। इसलिए हम दोनों को भगवान के ही रूप में स्मरण करते हैं, केवल दार्शनिक के रूप में स्मरण नहीं करते हैं। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी का इतिहास देखो, ऐसा अद्भुत इतिहास भारत भूमि में मिलना बहुत मुश्किल है। छोटे से उम्र में, अपनी आयु में उन्होंने अद्भुत दार्शनिक संपदा का खजाना भारत भूमि को दिया। आध्यात्मिक चिंतन करने वाले मनुष्यों के लिए इतने खजाना दिए है, कभी खत्म न हो, उनके चिंतन की प्रक्रिया कभी समाप्त न हो, हजारों लाखों वर्ष तक भी वह संपदा कभी खत्म नहीं होगी। उस प्राचीन काल आजकल की तरह शायद भौतिक साधनों से संपन्नता नहीं थी भारत भूमि में, पैदल यात्रा करते हुए पूरे भारत भूमि में अध्यात्म का प्रचार प्रसार और दार्शनिक ग्रंथों की रचना और ऐसे क्रांतिकारी समाज सुधार का उन्होंने काम किया है कि भारत भूमि कभी भी उनके इस देन से उऋण नहीं हो सकता है। बड़े विलक्षण प्रतिभा, ऐसे अवस्था में उनका अवतार हुआ है। भारत के इतिहास को हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि जब अनात्मवादी शून्यवादियों का ऐसा बोलबाला था कि न तो कोई वैदिक कर्म हुआ करते थे, न वेद को प्रमाणित वेद को प्रमाण मानते थे, वेद और वैदिक सिद्धांत का ही अपलाप हो चुका था, वेद प्रतिपादित कोई यज्ञ याग आदि नहीं होते थे, बंद हो गए थे, और वेद प्रतिपादित जो हो श्री विग्रह भगवत विग्रहों की अर्चना पूजा ये सब खत्म हो गया था। सर्वम शून्यम सर्वम क्षणिकम, इस प्रकार का पूरे भारत भूमि में क्या विश्व में क्षणिक विज्ञानवाद और शून्यवाद का प्रचार ऐसा हुआ था। उस अवस्था में भगवान शंकराचार्य जी का अवतार हुआ। इतिहास में बड़े सुधार भी हुए हैं और बहुत विकार भी हुआ है। एक पक्ष को सुधारते हैं तो दूसरा पक्ष बिगड़ जाता है। ये संसार का नाम है भाई। हमसे लोग पूछते हैं, महाराज ये कुछ लोग तंत्र मंत्र इंत्र करने वाले जो है बलि चढ़ाते हैं, काटमार करते हैं देवी देवताओं के नाम पर, क्या ये सही है, शास्त्र सम्मत है, हमसे पूछते हैं। है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन किस प्रयोजन के लिए ये सब है? शास्त्र सम्मत है, किस प्रयोजन के लिए, उस पर निर्भर करता है। कहते हैं भगवान बुद्ध के अवतार से पहले पूरे भारत भूमि में तंत्र शास्त्र का ऐसा साम्राज्य था, तंत्र विद्या का ऐसा साम्राज्य था कि हर व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए तंत्र का सहारा लेता था, तंत्र का आश्रय लेता था। और वह तंत्र ऐसा तंत्र था कि कापालिक तंत्र था, वामाचार तंत्र था। उसका ऐसा बोलबाला हो गया था, शाक्त संप्रदाय का जबरदस्त प्रचार था, और भैरव और शाक्त शक्ति की पूजा, दोनों उग्र देवता है, दोनों तामसिक हैं, क्योंकि यक्षानुरूप हो बलि, ये वेद का नियम है। जिस प्रकार के गुण से युक्त देवता है उसके उसी प्रकार की पूजा करो, उसी साधनों से पूजा करो। सात्विक देवता के लिए सात्विक साधन और सात्विक विधि से पूजा करो। देवता यदि राजसिक है तो उसको राजसिक साधन और राजसिक विधि से पूजा करो। देवता यदि तामसिक है तो तामसिक साधन और तामसिक विधि से पूजा करो। तो क्योंकि तंत्र में विशेष करके तमोगुण का प्रयोग करते हैं, मारण मोहन उच्चाटन त्राटन इत्यादि, उसी को अविचार कहते हैं। पहले ऐसा समय निकल गया था, प्रचार था कि पूरे समाज में अपने को शक्ति संचय करने के लिए सब इसी का आश्रय लेते थे और इसी के माध्यम से वो अपने आप को शक्तिशाली मानते थे। परिणाम यह होता था कि उस समय में बलि की बहुत बलि प्रथा बहुत प्रचलन था। भैरव की उपासना करो और बलि चढ़ाओ, काली की उपासना करो बलि चढ़ाओ, बलि ही उपासना का पूर्ण अंग था। तो चारों तरफ काट मार, तो इस प्रकार के कृत्यों को रोकने के लिए भगवान नारायण स्वयं बुद्ध के रूप में अवतार लिया और उन्होंने सब रोकना शुरू किया कि ये बलि क्यों कर रहे हो, पूजा के नाम पर है, ये हिंसा क्यों कर रहे हो, प्राणी की हत्या क्यों करते हो, ये गलत काम कर रहे हो तुम लोग। तो सब लोगों ने बुद्ध को जवाब दिया, कौन कहता है हम गलत काम करते हैं, वेद ने लिखा है ये देख लो, वेद के अनुसार हम कर्म कर रहे हैं, वैदिक कर्म है, शास्त्र प्रमाण है। ऐसा जवाब देने लग गए तो भगवान बुद्ध को यह कहना पड़ा कि हिंसा की आज्ञा देने वाला वेद वेद ही नहीं, वो शास्त्र नहीं हो सकता है, इसलिए वेद गलत है। तो एक प्रयोजन को लेकर उन्होंने ये बात कही थी कि वैद्य की हिंसा को रोकने के लिए, बलि को रोकने के लिए उनको यहां तक कहना पड़ा, जिस शास्त्र की दुआई देते, जिस शास्त्र का प्रमाण देकर तुम इस प्रकार के काटमार में प्रवृत्त हो रहे हो तुम लोग, वो शास्त्र ही गलत है। परिणाम ये हुआ कि हिंसा तो रुक गया, तो शास्त्र ही गलत है कहा तो फिर वेद ही गलत हो गया। तो ऐसा समाज में ऐसे धारणा प्रतिष्ठित हो गई कि वेद गलत है, तब वेद के कहे हुए सारे कर्म गलत है। परिणाम हुआ कि यज्ञ बंद हो गए, मंदिर तोड़े गए, मूर्ति तोड़े गए, मंदिर मूर्ति सबकी पूजा आजा सब कुछ अर्चना सब बंद हो गए। सर्वम शून्यम सर्वम क्षणिकम, इस विषम परिस्थिति की सृजना हुई। तब भगवान शिव ने विचार किया, एक प्रयोजन को पूरा करने के लिए विष्णु ने बुद्ध के रूप में अवतार लिया, बहुत हिंसा का तांडव परिस्थिति को तो रोका, लेकिन परिणाम हुआ कि सारा वैदिक कर्म रुक गए, यज्ञ रुक गया, पूजा रुक गई ना। तो क्या करना चाहिए, तो फिर उसको पुनः प्रतिष्ठा करनी चाहिए। फिर शंकर भगवान शिव शंकराचार्य जी के रूप में अवतार लेकर कहा कि नहीं, वेद सही है, वैदिक कर्म सही है, इसका मतलब यह नहीं कि मार काट सही है, शक्ति की आवश्यकता है, शक्ति की उपासना करनी चाहिए, लेकिन शक्ति की उपासना करने की विधि दूसरी विधि भी है। ये समयाचार की प्रतिष्ठा आदि गुरु शंकराचार्य जी का देन है। तंत्र शास्त्र में, शक्ति उपासना में, तंत्र शास्त्र में समयाचार की उपासना की देन ये आदि गुरु शंकराचार्य जी का देन है। जहां कोई काट नहीं, मार नहीं, कोई बलि नहीं, कोई तामसिक का कोई अंश ही नहीं है, शुद्ध सात्विक विधि से उस शक्ति की उपासना करते हैं। तब राजराजेश्वरी ललिताम्बा की पूजा आरंभ करा दिया, तब उन्होंने सौंदर्य लहरी की रचना करके शक्ति की उपासना करनी हो तो इस विधि से करो, काटमार गलत है। तब पूरे भारत भूमि में भ्रमण करते हुए आदिगुरु शंकराचार्य जी ने सब जगह वैदिक कर्मों की पुनः प्रतिष्ठा की, वेद का उद्धार किया, वैदिक कर्म आरंभ कराई और सब टूटे हुए मठ मंदिरों का पूर्ण जीर्णोद्धार किया। उसी क्रम में आप लोग इतिहास पढ़ते हो। आज जो बद्री विशाल हम लोग पूजा करते हैं, दर्शन करने जाते हैं, उन्हें अनात्मवादी शून्यवादियों ने तोड़कर फेंक दिया था अलकनंदा में। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जाकर उस मूर्ति को खोजा और पुनः मंदिर की प्रतिष्ठा की। आज जो श्री विग्रह बद्री विशाल भगवान का है, वो शंकराचार्य जी के हाथ से प्रतिष्ठा की हुई है, नहीं तो वो था नहीं, फेंक दिया तोड़कर। इसी तरह काठमांडू में जो पशुपतिनाथ भगवान है, वह भी अनात्मवादी शून्यवादियों ने तोड़कर फेंक दिया था, खत्म था। शंकराचार्य जी गए, फिर पशुपति भगवान का पुनरुद्धार किया, जीर्णोद्धार किया, पुनर्प्रतिष्ठा की। आज इस बात को सर्वमान्य रूप में यदि माना जाए तो 1250 वर्ष हो गए, लेकिन उनके बारे में कुछ लोग पूरा 2400 वर्ष मानते हैं। भगवान बुद्ध से 100 वर्ष पश्चात शंकराचार्य जी का अवतार हुआ है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। इसलिए लगभग 2400-2500 वर्ष हो गया शंकराचार्य जी का, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, 1250 तो सभी लोग मानते हैं, निर्विवाद है। पश्चिमी और पूर्वीय सभी दार्शनिक लोगों ने 1250 वर्ष पहले के इतिहास को, शंकराचार्य जी के इतिहास को माना है। ये शंकराचार्य जी का डीएनए है। बहुत प्रौढ़ ग्रंथों की रचना और भाष्यों की ग्रंथ की रचना, सारे उपनिषदों पर, एकादश उपनिषदों पर भाष्य ग्रंथ, ब्रह्मसूत्र जैसे न्याय ग्रंथ पर भाष्य की रचना, लघु प्रस्थान पर आदिगुरु शंकराचार्य जी के भाष्य की रचना हुई है, गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। हमारे दार्शनिक वेदांत दर्शन में इन तीन ग्रंथों को लघु प्रस्थान कहते हैं, प्रस्थान त्रय, तीन प्रस्थान। प्रस्थान का अर्थ होता है मार्ग, प्रस्थीयते इति प्रस्थान, जिसके माध्यम से, जिसके आधार पर हम चल सकें, वो प्रस्थान। हमको पहुंचना है मोक्ष पर्यंत, और उस मोक्ष पर्यंत पहुंचने के लिए मुख्य मार्ग क्या है, तो श्रुति, स्मृति और न्याय। उपनिषद श्रुति प्रस्थान है, गीता स्मृति प्रस्थान है, और ब्रह्मसूत्र न्याय प्रस्थान है। इसलिए शंकराचार्य जी बार बार हर जगह ये तीन शब्द का प्रयोग करते हैं, श्रुति स्मृति न्याय युक्ति। इस पर विचार करो तो ये तीनों ग्रंथों पर उन्होंने भाष्य लिखा। इसके अलावा शंकराचार्य जी के अनेक मौलिक रचनाएं हैं, अपनी मौलिक रचनाएं, स्वतंत्र मौलिक रचनाएं। उपदेश साहस्री इतना बड़ा ग्रंथ है जिसमें 1000 उपदेश संकलित हैं। उस ग्रंथ का नाम ही है उपदेश साहस्री, 1000 उपदेश है मुमुक्षुओं के लिए। उसके बाद अनेक सिद्धांत बिंदु आदि हैं, 10 श्लोकी आदि हैं, दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम, विवेक चूड़ामणि, अपरोक्षानुभूति, देखो पंचीकरण, अनेक ग्रंथों की रचना हुई है। ये सब तो दार्शनिक है, ये सब ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ है। इन सब को देखकर बहुत लोग ये कहते हैं कि भगवान शंकराचार्य जी शुष्क वेदांती है, नीरस वेदांती है, दार्शनिक हैं लेकिन नीरस है, उनके दर्शनों में कोई रस नहीं, कोई आनंद नहीं। ये आक्षेप भी लगाते हैं व्यक्ति। लेकिन वो लोग एक बात भूल जाते हैं कि भगवान शंकराचार्य जी के विचारों में, चिंतन में भक्ति रस का इतना ओतप्रोत है, इतना भरा हुआ है कि इतना सागर है। भगवती जगदम्बा पराम्बा की उपासना के लिए शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी नामक 100 श्लोकों की, सौंदर्य लहरी नामक एक ग्रंथ की रचना कर दी।